देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्कार है। गीता के 13वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, इंद्रियार्थेषु वैराग्य। मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थों में जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसके प्रति वैराग्य भाव आ जाए, डिटैचमेंट आ जाए, अनहंकार, व्यक्ति इगोलेस हो जाए, अहंकार रहित हो जाए, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी आदियों में जिसको दुख दिखाई देने लगे, ये सब ज्ञानी का लक्षण होता है, समझदार व्यक्ति का ये सिम्टम होता है। पहले भी हमने कुछ सिम्टम्स के बारे में, लक्षणों के बारे में चर्चा की है। तो इस श्लोक में पहला है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जहां पर सेंस एंजॉय करता है, उन चीजों के प्रति मन को रोकना व उनके प्रति डिटैचमेंट पैदा करना। सज्जनों देवियों, आप किसी चीज को जानते हैं कि यह अच्छा है या नहीं है, उसके बावजूद भी हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं, ये पता होने पर भी कि ये खराब है हमारे लिए, ये पता होने पर भी कि ये अच्छा है, हम उसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो अटैचमेंट या जो डिटैचमेंट, जो लाइक और डिसलाइक इतना गहरा हो चुका होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल होता है। अगर आप फोर्सफुली उन चीजों को छोड़ेंगे, किसी ने कहा, कहीं से सुना, शास्त्रों में लिखा है, डॉक्टर ने कहा, धर्माचार्यों ने कहा, इसीलिए आप इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए और खतरनाक बनेगा। बाकी खतरा तो जो होगा होगा, आपके कैरेक्टर में हिपोक्रेसी आने लगेंगे, मतलब आप इंद्रियों से तो छोड़ देंगे, शरीर से तो छोड़ देंगे, मन में उसके प्रति आपकी भावना बनी रहेगी, आप वो सब करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, पर शरीर से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आपके ऊपर प्रेशर है, वो सोशल प्रेशर हो, रिलीजियस प्रेशर हो, कल्चरल प्रेशर हो, फिजिकल प्रेशर हो, प्रेशर से, दबाव के कारण चीजें जब आप छोड़ देते हैं तो वो आपको अंदर से किसी भी तरह का कोई हेल्प नहीं करता। बाहरी दुनिया में थोड़ा बहुत आपको हेल्प करे, आपको इसके कारण कुछ सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिले ना मिले अलग बात है, पर ओवरऑल उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता छोड़ने का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें पता है कि ये सब नहीं करना चाहिए व ये सब छोड़ देना चाहिए, पर हम कर नहीं पाते और हम करने की कोशिश करते नहीं होता है, होगा भी नहीं। और जो लोग आदत डाल डाल के छोड़ भी देंगे, वो बहुत भयानक किस्म के पाखंडी भी बनते हैं, ऐसा हम दुनिया में बहुत सारे जगह देखते हैं, खास करके रिलीजियस फील्ड में हम आपको देखते हैं कि धर्माचार्यों का पाखंड कितना भयंकर होता है, किसी भी धर्म में हो। उसका कारण है जो बेसिक कॉज को हम एड्रेस नहीं करते। जिस चीज को आप पसंद करते हैं, अगर आप उसको फिजिकली छोड़ते हैं व दूर रहते हैं, आप मेंटली उसके प्रति अभी भी अटैच्ड हैं, उसको पाना चाहते हैं, और आपके अंदर वो कंफ्लिक्ट चलता रहता है। कभी किसी दिन आपको मन करे कि मैं ये चीज छोड़ना चाहता हूं, ये चीज करना चाहता हूं, तो जिसको आप छोड़ना चाहते हैं वो कन्विक्शन पैदा करें मन के अंदर। जिस दिन हमारे मन में ये कन्विक्शन हो जाए कि नहीं ये बुरी चीज है, फिर चाहने पर भी आप उसे कर नहीं सकते हो। आपके अंदर से सामने सामान रखा भी हो तो भी खाने को मन नहीं करेगा। अगर ये कन्विक्शन बड़ा गहरा हो कि ये बुरी चीज है, अगर कन्विक्शन इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, तो आप छुपा के खाएंगे, दिखा के खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे। आपको किसी से बात, किसी चीज से दूर रहना है, अगर आप इसीलिए दूर रहते हैं कि किसी ने कहा है, किसी ने कोई जबरदस्ती है, कोई मजबूरी है, तो आप छुप के बात करेंगे, खिड़की से देखेंगे, छुप के देखेंगे, आईना से देखेंगे, कुछ ना कुछ करके देखते रहेंगे। अगर आपके अंदर ये कन्विक्शन हो जाए कि इसके देखना बुरी बात है, तो वो सामने कैसा भी रूप लेकर के आए आपको देखने को मन करेगा ही। जब देखने को मन ना करे वो ना देखना रियल होता है। इसी को कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियार्थों को छोड़ने की सलाह हमारे शास्त्रों में बहुत कम मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऋषियों को पता है साइकोलॉजिकली ये बड़ा डिजास्टर है, ये बड़ा बीमारी पैदा करता है जब आप छोड़ते हैं, फिजिकली छोड़ते हैं, फोर्सफुली छोड़ते हैं। इसीलिए उपदेश होता है कि डिटैच करो इंद्रियों के प्रति, जो ऑब्जेक्ट है, जिन जो चीजें आपको खींचता है अपने तरफ, जिन चीजों की ओर हम अट्रैक्टेड होते हैं, उन चीजों के बुराइयों के बारे में सर्च करो, रिसर्च करो, उसको दिमाग में रखो, उसको डिस्कस करो, उसके अपने टॉपिक बनाओ, जीवन में, मन में, विचार में, हर जगह छाने की आदत डालो, और धीरे धीरे आप देखेंगे उस चीज के प्रति आपके अंदर कन्विक्शन पैदा होगा कि ये चीजें बुरी चीजें हैं, तो अपने आप आपका उसे छूट जाएगा। इसका अपोजिट भी, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर आपसे होता नहीं है, इसी तरह उसकी अच्छाइयों के बारे में सर्च करो, रिसर्च करो, डिस्कस करो, पता लगाओ, मन के अंदर वो पैदा करो। अगर मन के अंदर वो बात बन गई कि अच्छी चीज है, फिर कोई भी शक्ति आपको उसको करने से, भोगने से रोक नहीं सकता। अगर ये वैराग्य मन में नहीं आया ऑब्जेक्ट्स के प्रति, सिर्फ फिजिकली हम करते हैं, वो बहुत दिन तक अगर आप ऐसा करते रहे कि मन में आपको अच्छा लगता है शरीर से छोड़ा, मन में आपको नफरत है पर शरीर से आप प्यार करते हैं, तो वो आपके प्रति बड़ा नुकसान पैदा करता है। और जो ऑब्जेक्ट, जो सेंस को ग्रेटिफाई करने वाले ऑब्जेक्ट हैं, ये जो दुनियादारी की चीजें हैं, जो हमें आकर्षित करता है, आप एक स्टोर में घुस जाते हैं, आप एक रोड में जाते हैं, कहीं भी आप हो, दुनिया भर की चीजें आपको अट्रैक्ट करता है, ये उसका स्वभाव है। और जो व्यक्ति इसके अट्रैक्शन में फंसता है, वो फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिर वो बैंकरप्ट होता जाता है, वो बर्बाद होता जाता है, वो हर तरह से कंगाल होता जाता है। जो व्यक्ति जितना कंट्रोल रखता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा रेगुलेशन रखता है, उतना उसके लाइफ में सुख बना रहता है। ध्यान दीजिएगा, सुख देने वाले चीजों के प्रति, जो सुख देने वाले जो दिखते हैं, सुख उससे मिलता नहीं है। सुख तो आपके अंदर से होता है, आपके पास कितना है ये सुख का कारण नहीं होता है, आपके पास जो है उसमें आपको सुख मिलता है कि नहीं ये कारण होता है। सो बी कन्विंस्ड दैट द सेंसेस हैव टू सबसर्व योर बेस्ट इंटरेस्ट, दैट यू शुड सबसर्व द इंटरेस्ट ऑफ द सेंस। ईश्वर ने जो हमें इंद्रियां दी हैं, इंद्रियां मतलब जो सेंसेस, जो इंस्ट्रूमेंट दिया, हाथ का, नाक, पैर वगैरह वगैरह, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिया, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है कि हम इनके द्वारा कुछ करें, दुनिया को जान पाए, दुनिया को यूज कर पाए। पर जब इंस्ट्रूमेंट आपका मालिक बन जाता है, ड्राइवर की जगह गाड़ी अगर अपनी मर्जी से चलने लगती है तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। ड्राइवर अगर कंट्रोलिंग सीट पर होते हुए भी कंट्रोल नहीं करता तो गाड़ी अपनी मर्जी से चलने लगती है। गाड़ी जब अपनी मर्जी से चलने लगती है, आप गाड़ी के मर्जी से चलने लगते हो, तो आंख मूंद के पक्का मान लीजिए कि एक्सीडेंट होना ही होना है। समस्या यहीं पर होती है। पैदा होते ही हमें ये सिखाया नहीं गया या हमें उल्टा सिखाया जाता है। और जिस भी कारण से जो इंद्रियां हमारे साधन होने चाहिए, साधन का मतलब इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो हमारे मालिक बन जाते हैं। मैं इसीलिए कोई चीज नहीं खाता हूं कि मुझे पता है ये खाना चाहिए। मैं इसीलिए खाता हूं कि उसको देखते ही मेरा मन करता है कि मैं खा लूं। मन का तो स्वभाव है, वो हर चीज को करना चाहेगा। जीभ का स्वभाव है, कोई भी बढ़िया चीज देखे उसको जीभ से लाल अल्लाह आने लगेगा। कान का स्वभाव है, ये इंद्रियों का स्वभाव है। पर अगर मैं कान की हर डिमांड की पूरा करूं, मैं जीभ की हर डिमांड पूरी करूं, मैं अपनी नाक की हर डिमांड को पूरी करूं, तो फिर ये मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। मैं उनके सबोर्डिनेट बन जाता हूं, बनिस्बत की वो मेरे सबोर्डिनेट बने रहे। और जब इंद्रियों के हम गुलाम बनते हैं तब हम बीमार होते हैं। वो बीमार फिजिकली हो, मेंटली हो, इंटेलेक्चुअली हो, स्पिरिचुअली हो। और आफ्टर ऑल जो इंपैक्ट पड़ता है वो स्पिरिचुअली जो उसका कल्मिनेशन है, जो उसका अंतिम है, वो आत्मिक रूप से हम बर्बाद भी होते हैं। इसीलिए स्वाभाविक जो ज्ञानी व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि कोई आपको सलाह देता है कि आप ये सब करो, करने से होता नहीं है। विचार लाना पड़ता है, कन्विक्शन बनाना पड़ता है। पर जो ज्ञानी व्यक्ति जिसको ये समझ आ गया कि ये इंद्रियों का जो अर्थ है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, उसका मेरे लाइफ में एक लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है, मैं उसके लिए नहीं हूं, मैं खाने के लिए नहीं हूं, खाना मेरा साधन हो सकता है, सोने के लिए मैं नहीं हूं, मैं सोना बेड मेरे लिए साधन है सोने का। अगर आप ऐसा आदत डाल देते हैं कि खास तरह के बेड पर आपको नींद आती है, तो आपकी नींद फिर आपके कंट्रोल में नहीं, बेड के कंट्रोल में होता है। कल आपको वैसी बेड ना मिले तो नींद नहीं आएगी। तो आप अपने आप को सरेंडर कर चुके एक निर्जीव, एक प्राणहीन वस्तु के प्रति। वो वस्तु डिसाइड करता है कि आपको नींद आएगी या नहीं आएगी। आपके हाथ में ये नहीं रहा अब कि मैं जहां भी सो जाऊं तो सो सकता हूं। अगर आप कहीं भी नहीं सो पाते, पर्टिकुलर जगह पर ही सोते हैं, इसका मतलब आप अपनी ऑथोरिटी छोड़ चुके हैं अपनी नींद से। ऑथोरिटी छोड़ने का मतलब हम गुलाम हो चुके हैं किसी दूसरे चीज के। और गुलामी कभी सुख नहीं देती है देवियों सज्जनों। किसी भी चीज की गुलामी हो, गुलामी इंसान की हो, गुलामी समाज की हो, गुलामी इंद्रियों की हो, गुलामी किसी की भी हो, स्लेवरी कभी भी सुख नहीं देता है। और हम जब इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं तो फिर हमें कोई और सुधार भी नहीं सकता, हम कितने भी कोशिश करें। इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी का मतलब जो समझदार है, वो कभी अपने आप को किसी का स्लेव बनने नहीं देगा, ना किसी इंसान को, ना किसी नेचर को, ना अपने इंद्रियों को भी। अगली बात है अनहंकार, एब्सेंस ऑफ ईगो। ये भी एक क्वालिटी है, ये भी एक लक्षण है ज्ञानी व्यक्ति का। ऐसा नहीं कि आप अहंकारी हैं या नहीं है, आप कोशिश करके निरहंकारी बन जाएंगे या कोशिश करके अहंकारी बनते हैं, ये भी आपके अंदर से आता है। जो बाहर दिखता है वो तो उसका सिम्टम होता है, आप सिम्टम को रोकेंगे तो रोग नहीं रोकता है। पर जब आप ज्ञानी बन जाते हैं, आपका ईगो अपने आप को डिसअपीयर होने लगता है, गायब होने लग जाता है। ईगो की अपनी प्रॉब्लम है। हमारी जितनी बुराइयां हैं उसके मूल कारण हमारे अहंकार में छुपा हुआ होता है। हमारे रिलेशनशिप में खराबी हो, वो रिलेशनशिप पति पत्नी का हो, मां बाप बच्चों का हो, दोस्तों का हो, ऑफिस में ऑफिस का हो, वो रिलेशनशिप मेरे और समाज के साथ का हो, वो रिलेशनशिप मेरे और देश के साथ का हो, किसी के भी साथ, सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप खराब होती है वो ईगो के टकराव के कारण होता है। कभी कभी ईगो इतना भयंकर होता है, हम एक देख रहे थे तो लड़की ने लड़के को इसीलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो जब भी उसको एसएमएस करे वो जवाब कभी नहीं देता था, उसको कभी उसने आई लव यू वो दिन में दो चार बार बोलता नहीं था, कभी हफ्ते में एक आधा बार बोलता था। ये फिर वेस्टर्न कल्चर की अपनी एक प्रॉब्लम है कि आप अंदर से क्या करते हो मैटर नहीं करता, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, और जिस दिन बोलना बंद कर दिया इस दिन आपके रिलेशनशिप खत्म हो जाता है और बहुत लोगों का हो जाता है। क्यों? ईगो को ठेस पहुंचता है। व्यक्ति का अहंकार सिर्फ उसको नहीं डुबाता है, उसके आसपास बाकी लोगों को भी डुबाता है, और नेचुरली जब आप इगोइस्टिक होते हैं तो फिर आप ये केयर नहीं करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर तो सवाल ईगो का होता है ना। अगर जैसे आप छोटे बच्चे को देखिए, आप छोटे बच्चे को मना करिए कि ये मत करो, अगर आपकी आदत है बार बार मना करने की तो बच्चा वही करेगा जो आप मना करें। इसलिए कभी कभी उससे करवाने के लिए काम कराने के लिए वो चीजें कहो कि जो चीजें वो चीज मना करो जो उसको करने के लिए आप चाहते हो, क्योंकि जब आप मना करते हो उसकी ईगो को ठेस पहुंचता है और वो ईगो को बचाने के लिए वो सब उल्टा काम करने को तैयार है क्योंकि उसको अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है। ये बच्चा तक भी करता है, हम तो बहुत मैच्योर्ड हैं, हमारा ईगो तो बहुत मैच्योर्ड ईगो होता है, इसीलिए ज्यादातर बुरे कामों का कारण हमारे ईगो के कारण होता है। बुरे काम का अर्थ है कि जो हमारा बुरा बर्ताव है लोगों के साथ व खुद के साथ, हम खुद के साथ भी बहुत अनजस्टिस करते हैं। कभी आप अपने आप को, हम अपने आप को खंगालें, सर्च करें कि कितने चीजें हम अपने साथ करते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई आवर ईगो, और कुछ कारण नहीं जो हम अपने साथ करते रहते हैं। दूसरी चीज, ईगो का मूल कारण होता है कि जो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं, इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो कंफ्लिक्ट है, वो ईगो का मूल कारण होता है। इसीलिए बड़े इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ईगो हमेशा ईगोइस्टिक लोग दो तरह के बात करेगा, या तो वो कहेगा मैंने वो किया ये किया वो किया वो किया, पास्ट टेंस में बोलेगा, मैं ये कर डालूंगा ये कर डालूंगा, तुम्हें देख दूंगा तुम्हें ये कर दूंगा मैं ये कर दूंगा। कभी भी इगोइस्टिक व्यक्ति प्रेजेंट टेंस में कम बोलता है। जैसे ही आप प्रेजेंट में आ जाएंगे आपका ईगो बहुत हद तक कम हो जाएगा, मतलब मैंने क्या किया और मैं क्या करने वाला हूं, मेरे लाइफ में मैंने क्या अचीव किया और मैं क्या अचीव करने वाला हूं। जिस दिन इन दोनों को, जिस मोमेंट में आप अपने पास्ट और फ्यूचर को हटा के अपने प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में बात करते हैं, प्रेजेंट में रहते, तो आपका ईगो वहां कम से कम मिलेगा। जब आप मेरे सामने खड़े हो प्रेजेंस में, तो मैं और आप दोनों हैं, दोनों इंसान हैं, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो इसीलिए ईगो करने का कोई मतलब नहीं है। पर जब आप मेरे सामने प्रेजेंट में खड़े हो पर आपको अपने पास्ट की याद आता है कि मैं वो था और तुम वो थे, तो ईगो पैदा करता है। या जब आप अपने फ्यूचर को सोचते हो कि मैं वो करने वाला हूं ये नहीं करने वाला, तो भी आपका ईगो आने लगता है। उस करंट मोमेंट में आप दोनों इंडिविजुअल है, दैट्स इट। आपके पीछे कोई बॉर्डन नहीं है, कोई बैग नहीं, कोई बैग पैक नहीं है जिसके अंदर बहुत सारा सामान भरा हो। ईगो के साथ जीने वाला आदमी वैसा ही है जैसे कोई गधा बहुत सारे सामान ढोता है। चंदनों की लकड़ी ढोने वाला गधा कभी चंदन का स्वाद गंध का फायदा नहीं ले पाता है। आप अगर पैसे के गर्भ में है, ज्ञान के गर्भ में है, रूप के गर्भ में है, जवानी के गर्भ में है, क्योंकि जो इगोइस्टिक व्यक्ति है वो अपने पास रहने वाले चीजों से कभी खुश नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, कोई भी इगोइस्टिक व्यक्ति जिसका अहंकार प्रबल हो, जिसका घमंड, जिसका गर्व बहुत हो, वो अंदर से कभी खुश नहीं रह सकता। वो कितना भी आपको नकली हंसी छोड़े, वो अंदर से हमेशा दुखी मिलेगा, खुश हो ही नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे गधा चंदन की लकड़ियों के सबसे क्लोज होने पर भी उसको कभी उसका फायदा नहीं मिलता। इसीलिए अगर आप समझ जाते हैं कि जीवन बड़ा छोटा सा है, सृष्टि अनंत कालों से अनंत काल तक चलता है, हमारा जीवन क्या छोटी सी बिंदु की तरह है, हमारे पहले करोड़ों करोड़ों लोग इस जमीन पर आए, घर बनाया, मंदिर बनाया, चर्च बनाया, जो भी बना, ऑफिस बनाया, चले। हमारे बाद भी कितने लोग आएंगे, कितने तरह के इंस्टीट्यूशंस खड़ा होगा, पता नहीं कल ये अमेरिका देश रहेगा या और कौन सा देश बनेगा, पता नहीं ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट रहेगा कि और कौन सा कंटिनेंट बनेगा, कितने इस धरती पर हलचल होंगे। पर उसके बावजूद भी इस हम बड़े छोटे से जीवन में भी इतने सारे अकड़ पालते हैं। जब पूजा करते हैं तो पूजा से पहले आप लोग संकल्प कराते हैं, उस संकल्प में आपको रेफरेंस स्थान और काल का दोनों का बताते हैं। काल शुरू होता है सृष्टि के आरंभ से, ओम श्री तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वंतरे, बिलियन बिलियन ईयर्स की सृष्टि हुई है अभी तक, फिर वो अलग चैप्टर है, तो वो आपको बताते हैं। फिर ये स्थान भी बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस सौर मंडल में, इस पृथ्वी ग्रह में, इस कंटिनेंट में, इस देश में, इस नगर में, इस बाजार में, इस घर में ये क्यों संकल्प कराते हैं, ये बताने के लिए कि तुम्हारी औकात क्या है इस धरती पर, इतने बड़े स्थान प्लेस में तुम्हारा घर का क्या औकात है, इतने बड़े समय में तुम्हारे लाइफ स्पान का क्या औकात है। अगर ये याद रह जाए फिर अकड़ आने आएगा ही नहीं, गर्व आएगा ही नहीं। जब दुनिया की समझ के करते हैं तो फिर समझदार नहीं आता। इसलिए जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा आपका अहंकार घटता जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति का अहंकार ज्यादा होता है। अज्ञानी का अर्थ नहीं कि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फिलोसोफर है, वो तो बुकिश नॉलेज है। रियलाइजेशन, जितना आपको ज्ञान सब बढ़ेगा, एक कुएं के मेंढक जो पैदा हुआ कुएं में और वहीं पला बढ़ा, वो जिंदगी भर कुएं से बाहर कभी निकल के गया ही नहीं था। गलती से बारिश के मौसम के कारण पानी चारों तरफ भर गए तो एक मेंढक, दूसरा मेंढक गलती से उस कुएं के अंदर गिर गया। तो कुएं के मेंढक ने पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले मैं मेंढक हूं तुम्हारे। तो मेंढक हो तो अभी तक कहां था, यहां तो थे नहीं जी, मैं बाहर से आया। कहां से आया? बोले मैं समुद्र से आया। समुद्र ये क्या चीज होता है? बोले वो एक बहुत बड़ी चीज है, पानी से भरा हुआ होता है। अच्छा, ये पानी ये कुएं से भी बड़ा होता है, बोले कुएं उसके सामने क्या है, उससे भी बहुत बड़ा होता है, वो झूठ बोलता है। कुएं से बड़ा कभी कोई होता है वाला? कुएं के मेंढक के लिए कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, हजारों प्रूफ दे दो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जिंदगी में कुएं से ज्यादा कुछ जाना ही नहीं है। जिस दिन वो कुएं से बाहर आकर दुनिया को जानेगा तो पता चलेगा कि कुएं से भी बड़ी चीज होती है। दुनिया के सारे ज्ञानी जाकर कुएं के मेंढक को समझा दें कि भाई कुएं से भी बड़े बड़े चीजें होती हैं, तालाब होती है, नदी होती है, समुद्र होता है, महासागर होता है, उसको यकीन नहीं होगा, वो मानेगा नहीं, क्योंकि वो अज्ञान है, उसको समझ नहीं है, वो उतना ही जानता है। इसीलिए उसको बहुत ईगो है कि मैं इस कुएं का राजा हूं और ये कुआं दुनिया है। जब आप अपने घर में राज करते हैं, जब आपको लगता है मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, मैं बड़ा धनी हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा ताकतवर हूं, मेरे पास बहुत जमीन है, मैं बहुत बड़े देश का राजा हूं, तब हम भूल जाते हैं कि वो जो जमीन है, वो जो देश है, वो जो घर है, वो पैसा है, दुनिया के सामने वो कुएं से भी बड़ा छोटा होता है। जिस दिन हम समुद्र भी देख लेंगे और रियलाइज कर लेंगे तो कुआं की फिर दोबारा ये बोलने में शर्म आएगा कि मैं कुएं का राजा हूं। पर शर्म तो तब आएगा ना जब समझ आ जाए। इसीलिए कहा ना समझ आदमी के तो घर घमंड रहता है, पर समझदार आदमी जैसे जैसे उसका समझ बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसका अहंकार घटता जाता है। इसीलिए और जो घमंडी व्यक्ति है उसकी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि वो दुनिया में किसी भी चीज से ईगो पैदा कर सकता है। मतलब एक आदमी का ईगो होता है कि उसके पास बहुत पैसा है, पैसा है मतलब उसने पैसा इकट्ठा कर रखा, पर मान लीजिए आप पैसा छोड़ देंगे तो घमंड कम हो जाना चाहिए, नहीं, इंसान बड़े समझदार है और इसको ईगो का भी बहुत स्मार्ट होता है, वो छोड़ने में भी घमंड पालता है। देखिए एक धनी आदमी का घमंड और एक सन्यासी का घमंड, दोनों में किसका घमंड ज्यादा मिलेगा? सन्यासी का ज्यादा मिलेगा, वो ऊंचे आसन से नीचे बैठेगा ही नहीं। क्यों? तुम्हें तो घमंड है तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, उसको घमंड है कि उसकी उसने सब छोड़ दिया। तुम्हें तो घमंड है तुम्हारे बच्चे कितने सुंदर है, तुम्हारी बीवी कितनी अच्छी है, उसको घमंड है देखो मैंने अपने बीवी बच्चे भी छोड़ दिया है। तो ये ईगो की एक खास बात है कि वो हर चीज को ईगो में कन्वर्ट करवा सकता है। आप कलेक्ट करो तो भी अहंकारी बन सकते हैं, आप त्याग करो तो भी अहंकारी बन सकते हैं, आप मूर्ख हो तो भी आपका अपना अहंकार है, आप किताबें पढ़ के बहुत सारी डिग्रियां ज्ञानी बन जाओ तो भी आपका अपना अहंकार है। तो समझदारी का अर्थ जब आप रियलाइज करेंगे आपके पास जो कुछ भी है वो कितना छोटा है दुनिया के सामने, आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान कितना छोटा सा ज्ञान है दुनिया के ज्ञान के सामने, तो अहंकार अपने आप कटने लगता है। अगली चीज है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। जन्म मतलब पैदा होना व मृत्यु मतलब मरना देह, जरा मतलब बुढ़ापा ओल्ड एज, व्याधि मतलब बीमारियां, ये सबके अंदर है, सबको आता है, सब पैदा हुआ है, सबको मरना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको बुढ़ापा से गुजरना पड़ेगा, बीमारी से गुजरनी पड़ेगी, किसी को बुढ़ा बीमारी से ही गुजर के खत्म हो जाना है या किसी को बुढ़ापा तक जाकर के खत्म होना है, पर आपको इनमें से इन सब में से गुजरना है। अरे ये सारे दुखदाई हैं, ये सबको पता है कि दुखदाई है, उसके बावजूद भी हमें हम कभी उसके बारे में ना सोचते ना बोलते हैं। और उल्टी बात है कि दुनिया के सभी कल्चर में सभी धार्मिक समाज में ये एक सिस्टम है, मौत की बात नहीं लेना, मौत के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, बड़ा पाप माना जाता है आप अपने मौत की बात की चर्चा कर दी। शुभ मुहूर्त में आप मौत की बात नहीं कर सकते। ये जो शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं ना, जो रेगिस्तान में जो ऑस्ट्रिच होता है, जो वो अपने शव को रेत के अंदर घुसा के रखता है कि भाई तूफान नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि बोल देने से कहीं आ तो नहीं जाएगा, ना बोलने से शायद नहीं आएगा। ये जो हमारे नेचर है, इसके ऊपर महाभारत में एक सुंदर कमेंट है। महाभारत में वन पर्व में युधिष्ठिर और यक्ष का डायलॉग के संवाद, यक्ष पूछता है कि माश्चर्य, ये संसार में कौन सी चीज है जो बड़ा वंडरफुल है, बहुत आश्चर्यजनक है, जो कमाल की चीज है। युधिष्ठिर आश्चर्य का सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, कहते अनन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्थावरम इच्छन्ति हिमाश्चर्यमतः परम। एवरी मोमेंट, हर मुहूर्त कितने सारे लोग प्राणी मरते हैं, लोग भी मरते हैं, प्राणी तो मरते ही मरते हैं, हर एवरी मोमेंट कितने सारे लोग मरते हैं। और हमें पता होता है कि कितने लोग कैसे मरते हैं, उसके बावजूद भी जो बचे हुए हैं, जो जिंदा लोग हैं, वो सोचते हैं मेरे पास मौत नहीं आने वाला है, या मैं मरने वाला नहीं हूं। ये जो सोच है, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे पता है कि मौत बिल्कुल इस दुनिया में अगर कोई 100% सर्टन है, वो है कि मेरी मौत। पर उसी चीज को ही मैं डिनाय करता हूं, नोइंगली अननोइंगली डिलिबरेटली मैं उसको अवॉइड करता हूं, मैं इसको इग्नोर करता हूं। अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि मौत दुखदायक है और ये पेनफुल है, पैदा होना भी कोई आसान नहीं है, ये भी पेनफुल है। अब 9 महीने अंधेरे में मां के पेट में पले रहते हैं, बाहर आते हैं तो आपको सालों डिपेंडेंट होना पड़ता है, आपकी अपनी कुछ चलती नहीं है, आपको दूसरों के सहारे पर जिंदा रहना पड़ता है, बहुत सालों के बाद आ जाकर आपको इंडिपेंडेंसी मिलती है। ये कोई सुखदायी नहीं है, ये पेनफुल होता है। बुढ़ापा की समस्या, बीमारी की समस्या सबको पता है, उसके बावजूद भी हम इसको अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अगर ये याद आने लगे, फिर हम जो कुछ करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जानबूझ के डिलीबरेटली हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। पर जो ज्ञानी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो उन सब में दुखों को समझता है, वो उनकी एविलनेस को फील करता है, वो जो एविलनेस को, उनकी बुराइयों को फील करने से उसके जीवन में, उसके कैरेक्टर में भी वो बदलाव देखने लगेगा। क्योंकि हमारी आदत है, हम दूसरों को दोष देते हैं। मेरे साथ कुछ भी हो, वो इसलिए नहीं कि मेरे में कमी है, वो दूसरों में कोई कमी है जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं बीमार हूं क्योंकि समाज ने ऐसे कर दिया, वो सिस्टम में ऐसे किया, सोसाइटी में ऐसे हुआ। जो कुछ मेरे कारण मेरे साथ होता है, वो दूसरों के कारण होता है। व्यक्ति जितना अज्ञानी होगा, वो दूसरों को ब्लेम करता जाएगा, जितना समझदारी बढ़ेगी, वो खुद को दोष मानने लगेगा। क्यों? स्मार्ट पर्सन वो होता है जो प्रॉब्लम को देखे, उसका सोल्यूशन ढूंढे। स्टूपिड पर्सन वह है जो प्रॉब्लम्स को देखे और उसको कंप्लेन करे, ब्लेम करता रहे और प्रॉब्लम वैसा की वैसा रहे। जब मेरे सारे दुखों का कारण दुनिया है, तो मैं दुनिया को तो बदल नहीं सकता, मैं दुनिया को ठीक नहीं कर सकता है? तो फिर मेरे प्रॉब्लम कभी सॉल्व होता नहीं है। जिस दिन मैं ये एक्सेप्ट कर लो कि मेरे प्रॉब्लम मेरे दुखों के कारण मेरे अंदर है, मेरे कर्मों का है, मेरे समझ का है, तो फिर मेरे पास चांस है उसको ठीक करने के लिए। और समस्या है कि मुझे वही नहीं करना है। प्राचीन काल में एक महाराज थे, बहुत कहानी आपने सुनी होगी। तो राजा जंगल में गए, शिकार करने के लिए तो उनके पैरों में कांटे घुस गए। तो उन्होंने कहा ये रास्ते में चलते हैं तो उनके पैरों में वो कंकर चुभ जाता है, मैं राजा हूं और मुझे सारी दुनिया सम्मान करती है, प्रजा सम्मान सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, पर मैं चलूं तो मुझे कांटे चुभ जाते हैं, कंकर चुभ जाता है, कोई मुझे रास्ता बता। तो लोगों ने क्या किया, अब राजा जहां जहां जाए वहां उन्होंने कारपेट बिछाना शुरू किया कि राजा वो कारपेट के ऊपर चल के जाए कि उनको कंकर ना चुभे, उनको कांटा ना चुभे। जंगल में जाए तो पहले जंगल साफ करो, सैकड़ों लोगों को काम में लगाओ, रास्ता साफ कराते जाओ, कारपेट बिछाते चलो, तभी राजा चलेंगे। एक समझदार आदमी ने राजा को एक दिन दो जोड़े एक जोड़ा चप्पल ला करके दिया कि महाराज इसको पहनिए, अब कांटे और कंकर चुभेंगे नहीं, आपको लाखों रुपए खर्च करके कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं है, आपको जंगल साफ करने की जरूरत नहीं। वो एक पैर चप्पल पहना, ना कांटे चुभे ना कंकर चुभे। आप सारी दुनिया कंकर ना चुभे इसके लिए सारे दुनिया के कंकर आप हटा नहीं सकते, अगर कुछ कर सकते हैं अपने पैरों के साथ करिए। हमारी प्रॉब्लम है कि हमें चप्पल बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, हमें दुनिया को सुधारने में इंटरेस्ट है, हमें तो दुनिया को बदलनी है, देश बदलना है, समाज को बदलना है। तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, मैं तो बदलूंगा ना, दुनिया को चेंज करने के लिए मैं आया हूं, मेरे बारे में क्यों सवाल पूछते हो। सारा दुख यहीं छुपा होता है, मेरे जन्म, मेरे बुढ़ापा, मेरे मौत, जब मैं इनके बारे में सोचूं, इनकी दर्दों के बारे में सोचूं, तो मेरे काम अपने आप अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना आगे जाकर के मेरे साथ बुरा हो। तो फिर जब मुझे पता चलेगा कि मेरे बुराइयों का कारण मेरे अंदर है, फिर मैं अपने आप को सुधारने लग जाऊंगा। अब ये तभी होगा जब मुझे इनमें दुख दिखाई देने लगे, जब ये बुढ़ापा में, पैदा होने में, मौत में आपको दर्द दिखाई देने लगे और उनका कारण खुद के अंदर ढूंढने लगे, तो मैं सुधरने लगूंगा। और ये तभी होगा जब मेरा समझ हो, जब मैं ज्ञानी हूं। अज्ञानी व्यक्ति को तो दुनिया में बुराई दिखती है, ज्ञानी को खुद के अंदर बुराई दिखती है। जिस दिन वो इतना समझ जाए तो वो खुद के लिए सुख ला सकता है। अगले श्लोक की चर्चा हम अगले बार करेंगे, यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति।